एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
और मैं हूं आपकी पहली मेजबान। आज हम मिलकर एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने न जाने कितने लोगों को दर्शन यानी फिलॉसफी से प्यार करना सिखाया है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं विल ड्यूरेंट की मशहूर कृति दर्शन की कहानी या द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी की।
हाँ, और ये किताब सिर्फ मतलब पुरानी बातें नहीं बताती, ये आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद शायद पहले से भी ज्यादा।
ये बात आपने सही कही। आजकल देखिए, जानकारी का इतना शोर है ना, तो ये किताब हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन के असली मायने क्या हैं, हम एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज कैसे बन सकते हैं।
अच्छा,
ड्यूरेंट हमें दिखाते हैं कि भाई ये सवाल कोई नए नहीं है, सदियों से महान विचारक इन पर मंथन करते आए हैं।
और जिस अंदाज में ड्यूरेंट ये करते हैं वो तो कमाल का है। मतलब मुश्किल विचारों को कहानी की तरह पिरो देना,
हाँ,
ताकि फिलोसफी बोझिल न लगे बल्कि एक रोमांचक यात्रा बन जाए।
तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं खुद विल ड्यूरेंट से। कौन थे ये शख्स जिन्होंने इतने मुश्किल विषय को इतना आसान बना दिया?
हाँ बताइए।
विल ड्यूरेंट 1885 से 1981 तक एक अमेरिकी लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD थे। पर उनकी असली पहचान शायद उनकी पत्नी एरियल के साथ मिलकर लिखी वो 11 वॉल्यूम वाली विशाल किताब है,
द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में।
जी,
और दिलचस्प बात ये, जैसा आपने पहले इशारा किया कि ड्यूरेंट खुद को कोई मौलिक दार्शनिक नहीं मानते थे, है ना?
सही,
वो कोई नया सिद्धांत नहीं गढ़ रहे थे, उनकी खूबी थी विचारों को जोड़ना, समझना और फिर
उन्हें एक कहानी की शक्ल देना।
बिल्कुल, विचारों के बेहतरीन कथावाचक थे वो। आपने उनकी नब्ज पकड़ ली। दर्शन की कहानी की शुरुआत भी तो न्यूयॉर्क में कामकाजी लोगों के लिए दिए गए लेक्चर्स से हुई थी।
हाँ, यही तो मकसद साफ था, दर्शन को अकादमिक दीवारों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाना।
उनका नजरिया एक विचारों के इतिहासकार का था।
मतलब वो सिर्फ क्या सोचा गया इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे,
बल्कि क्यों सोचा गया इसमें ज्यादा।
एग्जैक्टली, दार्शनिक का जीवन, उसका समय, उसके संघर्ष, ड्यूरेंट मानते थे कि इन सब को समझे बिना आप उसके दर्शन को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
ये मानवीय पहलू ही उनकी लेखनी को इतना जीवंत बनाता है।
तो ये किताब दर्शन की कहानी असल में है क्या?
एक तरह से ये पश्चिमी दर्शन के सफर का नक्शा है।
कहां से कहां तक?
प्राचीन यूनान के सुकरात और प्लेटो से शुरू होकर 20वीं सदी के शुरुआती विचारकों तक।
पर ये सिर्फ विचारों की लिस्ट नहीं है, है ना? ड्यूरेंट का मुख्य तर्क क्या है?
उनका मुख्य तर्क ये है कि दर्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन दार्शनिकों के जीवन को समझना। अच्छा,
वो हमें क्लासरूम में नहीं बल्कि इतिहास के इन महान दिमागों के साथ एक तरह की बातचीत में शामिल करते हैं। हम उनके जुनून, उनके शक, उनके सामाजिक दबावों को महसूस करते हैं
जिनसे उनके क्रांतिकारी विचार जन्मे।
हाँ,
तो फिर ये किताब किसके लिए है? क्या सिर्फ फिलॉसफी स्टूडेंट्स के लिए?
बिल्कुल नहीं, यही तो ड्यूरेंट की खासियत है। ये उन सभी जिज्ञासु लोगों के लिए है जो जीवन, नैतिकता, ज्ञान, राजनीति जैसे बड़े सवालों के बारे में सोचते हैं।
लेकिन शायद भारी भरकम किताबों से थोड़ा कतराते हैं।
हाँ, ड्यूरेंट इसे एक महान संवाद कहते हैं, ग्रेट कॉन्वर्जेशन, एक ऐसी बातचीत जो हजारों सालों से चल रही है,
जहाँ हर विचारक अपने से पहले वाले के काम पर कुछ जोड़ता है
या उसे चुनौती देता है या सुधारता है। विचार अकेले पैदा नहीं होते,
यानी ये हजारों साल के बौद्धिक इतिहास को एक सिलसिलेवार दिलचस्प कहानी में पिरोने की कोशिश है।
बिल्कुल, जो न सिर्फ समझने में आसान है बल्कि आज भी हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देती है, एक तरह से मानव विचार की महागाथा।
चलिए तो फिर ड्यूरेंट के साथ इस महागाथा के कुछ अहम पड़ावों पर चलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें?
शुरुआत होती है प्राचीन एथेंस से, और यहाँ सबसे पहले मंच पर आते हैं सुकरात। हालांकि उन्होंने खुद कुछ लिखा नहीं।
हाँ, ये दिलचस्प है।
ड्यूरेंट बताते हैं कि सुकरात वो धुरी थे जिन्होंने दर्शन का रुख ब्रह्मांड के रहस्यों से मोड़कर इंसान की आत्मा और नैतिक जीवन की ओर कर दिया।
उनकी वो मशहूर सुक्रेटिक मेथड, सवाल पूछ पूछ कर सच तक पहुँचना।
हाँ, सामने वाले को उसके अज्ञान का एहसास कराना और फिर मिलकर सच की खोज करना। ड्यूरेंट उनके मुकदमे और मौत का भी बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं।
कैसे उन्होंने सच के लिए जहर का प्याला पीना चुना, और ये कहानी उनके शिष्य प्लेटो के जहन पर गहरा असर छोड़ गई।
बिल्कुल, प्लेटो अपने गुरु की मौत से इतने हिल गए थे कि उनका पूरा दर्शन एक तरह से न्याय और स्थिरता की तलाश बन गया।
ड्योरन प्लेटो के मुश्किल विचारों को भी बड़ी आसानी से समझाते हैं, जैसे उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, प्रत्ययों का सिद्धांत।
हाँ, कि ये दुनिया असली नहीं है, ये तो असली शाश्वत प्रत्ययों की परछाई मात्र है। असली न्याय, असली सुंदरता तो उस अंधे की दुनिया में है।
और वो गुफा का रूपक, एलेगोरी ऑफ द केव, वो कहानी तो दिमाग में छप जाती है,
है ना? कैसे कैदी सिर्फ दीवारों पर परछाइयां देखकर उसी को सच मानते हैं, और कैसे एक दार्शनिक उस अंधेरी गुफा से निकलकर ज्ञान के सूरज को देखता है।
ये दर्शन की यात्रा का कितना सटीक चित्रण है। फिर उनकी किताब द रिपब्लिक, गणराज्य।
हाँ, जिसमें वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, जहां राज करेंगे दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग्स,
यानी ज्ञानी और सदाचारी शासक। ये सब एक तरह से सुकरात जैसे लोगों को बचाने की कोशिश थी।
लेकिन प्लेटो के सबसे मशहूर शिष्य अरस्तु ने तो अपने गुरु से बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प मोड़ है कहानी में।
जहाँ प्लेटो आदर्शों की दुनिया में खोए थे, वहीं अरस्तु ने कहा, रुको भाई, असली दुनिया तो ये है जिसे हम देख सुन छू सकते हैं।
उनका नजरिया ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा जमीनी था।
ड्यूरेंट इस गुरु शिष्य के बौद्धिक मतभेद को बड़े दिलचस्प तरीके से दिखाते हैं।
सही कहा, अरस्तु को तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक का पिता माना जाता है। उन्होंने सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य का सिद्धांत दिया,
जो आज भी तर्क करने का आधार है।
बिल्कुल। फिर उनका तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स में चार कारणों, फोर कॉजेस का सिद्धांत। किसी चीज को समझने के लिए ये जानना कि वो किससे बनी है, उसका रूप क्या है, उसे किसने बनाया और उसका मकसद क्या है।
मुझे तो उनके नैतिकता, एथिक्स के विचार सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगते हैं।
हाँ, बताइए।
जीवन का लक्ष्य क्या है?
अरस्तु कहते हैं यूडाइमोनिया, यानी सच्ची खुशी या मानव का पूर्ण विकास।
और इसे पाने का रास्ता?
सद्गुणों का अभ्यास।
हाँ, और यही उनका वो मशहूर स्वर्णिम मध्य, गोल्डन मीन का सिद्धांत आता है, कि हर गुण दो बुराइयों के बीच का संतुलन है, जैसे साहस उतावलेपन और कायरता के बीच है।
किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक समझ जरूरी है।
बिल्कुल। अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं पुनर्जागरण काल के इंग्लैंड में,
और यहां मिलते हैं फ्रांसिस बेकन।
ड्यूरेंट उन्हें आधुनिक विज्ञान का भविष्य दृष्टा मानते हैं। बेकन ने अरस्तु के पुराने तर्क के तरीकों को चुनौती दी
और कहा कि ज्ञान सिर्फ सोचने से नहीं, दुनिया को ध्यान से देखने, प्रयोग करने और फिर नतीजे निकालने से मिलेगा।
हाँ, इसे कहते हैं आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग।
और उनकी वो मन की मूर्तियां, आइडल्स ऑफ द माइंड वाली बात तो कमाल की है,
है ना? उन्होंने बताया कि हमारे सोचने के तरीके में चार तरह के पैदाइशी या सीखे हुए पूर्वाग्रह होते हैं जो हमें सच तक पहुंचने से रोकते हैं।
कौन कौन से थे वो?
देखिए, पहला है कबीले की मूर्तियां, आइडल्स ऑफ द ट्राइब। ये हमारी इंसानी फितरत की कमजोरियां हैं, जैसे अधूरी जानकारी पर नतीजे पर कूद पड़ना। दूसरा, गुफा की मूर्तियां, आइडल्स ऑफ द केव। ये हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव और पसंद नापसंद से बने पूर्वाग्रह हैं।
अच्छा, पर्सनल बायस।
हाँ। तीसरा, बाजार की मूर्तियां, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस। ये भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाली गलत फहमियां हैं।
और चौथा,
रंगमंच की मूर्तियां, आइडल्स ऑफ द थिएटर। ये पुराने विचारों या विचारधाराओं को बिना परखे सच मान लेना है।
सोचे 400 साल पहले कही ये बातें आज कितनी सच लगती हैं।
बिल्कुल। और उनका वो नारा, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है।
ड्यूरेंट समझाते हैं कि बेकन के लिए ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं था,
बल्कि दुनिया को बदलने, प्रकृति पर काबू पाने और इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए था। इसी सोच ने वैज्ञानिक क्रांति को हवा दी।
अगले पड़ाव पर हम मिलते हैं एक बहुत ही अनूठे और साहसी विचारक से, बारूक स्पिनोजा।
हाँ, स्पिनोजा 17वीं सदी के हॉलैंड में रहने वाले एक यहूदी, जिन्हें उनके क्रांतिकारी विचारों के लिए उनके ही समुदाय ने बहिष्कृत कर दिया था।
ड्यूरेंट उन्हें एक ऐसे संत की तरह पेश करते हैं जिनका जीवन ही उनका दर्शन था, सादगी, शांति और बौद्धिक ईमानदारी।
उनकी किताब एथिक्स तो एक अजूबा ही है। उसे उन्होंने ज्यामिति की किताब की तरह लिखा है, परिभाषाएं, सिद्धांत, प्रमाण।
क्या कोशिश थी उनकी।
ड्यूरेंट बताते हैं कि ये ईश्वर, प्रकृति और नैतिकता को एक पूरी तरह तर्कसंगत प्रणाली में बांधने की कोशिश थी। उनका सबसे मशहूर विचार है पैंथिज्म।
पैंथिज्म?
हाँ, ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं, एक ही हैं।
देओस सीवे नैटुरा।
हाँ, हर चीज उसी एक परम तत्व का हिस्सा है।
इसका मतलब है कि कोई ऊपर बैठा दुनिया चलाने वाला ईश्वर नहीं है।
स्पिनोजा के हिसाब से नहीं, और इसी से जुड़ा है उनका नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत,
कि सब कुछ पहले से तय है।
हाँ, वो मानते थे कि दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता, सब कुछ प्रकृति के नियमों से तय है। हमारी आजादी, फ्री विल, एक भ्रम है।
तो फिर असली आजादी क्या है?
असली आजादी चीजों की इस अनिवार्यता को समझने और अपनी भावनाओं को तर्क से काबू करने में है। भावनाओं के कारण समझ लो तो उनके गुलाम नहीं रहोगे।
वाह, कितनी शांत और गहरी बात है।
अब आते हैं एक ऐसे जर्मन दार्शनिक पर जिन्हें ड्यूरेंट महान संयोजक कहते हैं, इमानुएल कांट।
हाँ, कांट,
जिन्होंने दो बड़ी विरोधी धाराओं को मिलाने की कोशिश की।
बिल्कुल।
बुद्धिवाद यानी रैशनलिज्म, जो कहता था ज्ञान सिर्फ तर्क से आता है, और अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म, जो कहता था ज्ञान सिर्फ अनुभव से आता है।
कांट ने कहा कि भई दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अधूरे हैं।
उन्होंने दर्शन में एक कॉपरनेशन क्रांति ला दी।
कैसे?
जैसे कॉपरनिकस ने कहा था कि सूरज धरती के चक्कर नहीं लगाता, धरती सूरज के चक्कर लगाती है, वैसे ही कांट ने कहा कि हमारा दिमाग दुनिया की जानकारी को चुपचाप ग्रहण नहीं करता,
बल्कि हमारा दिमाग ही अनुभव को आकार देता है।
हाँ, हमारे मन में समय, स्थान, कारणता जैसी जन्मजात श्रेणियां, इननेट कैटेगरीज हैं, जिनके चश्मे से ही हम दुनिया को देखते हैं।
मतलब हम दुनिया को वैसा नहीं जान सकते जैसी वो असल में है,
बल्कि सिर्फ वैसा ही जान सकते हैं जैसी वो हमें दिखती है। फिनोमिनन वर्सेस नोमिनन।
ड्यूरेंट इसे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के हवाले से समझाते हैं। कांट ने हमारे तर्क की सीमाएं तय कर दी,
और नैतिकता पर उनका कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, निरपवाद कर्तव्यादेश, वो तो बहुत मशहूर है।
हाँ, कि कोई काम सही है या गलत, ये उसके नतीजे या हमारी भावनाओं से तय नहीं होगा,
बल्कि इस तर्क से तय होगा कि क्या हम चाहेंगे कि हर कोई उसी स्थिति में वैसा ही करे।
सिर्फ उसी सिद्धांत पर चलो जिसे तुम एक सार्वभौमिक नियम बना सको। कितना स्पष्ट और शक्तिशाली नियम है।
और आखिर में ड्यूरेंट हमें मिलवाते हैं फ्रेडरिक नीचे से।
नीचे एक बेहद प्रतिभाशाली पर उतने ही विवादित और अक्सर गलत समझे जाने वाले विचारक। ड्यूरेंट उन्हें आधुनिक युग का एक बेचैन पैगंबर कहते हैं।
नीचे का नाम आते ही लोगों को ईश्वर मर चुका है, गॉड इज डेड याद आता है।
ड्यूरेंट समझाते हैं कि ये कोई खुशी का ऐलान नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। नीचे देख रहे थे कि विज्ञान और तर्क के युग में ईश्वर पर आस्था खत्म हो रही है, और इसके साथ ही परंपरागत नैतिकता की नींव भी हिल रही है।
इससे पैदा हो रहा है शून्यवाद, नीलिज्म, यानी जीवन में कोई अर्थ, कोई मूल्य न बचना।
तो इस शून्य को कैसे भरा जाए? नीचे ने कहा, शक्ति की इच्छा, विल टू पावर,
ये जीने की, बढ़ने की, खुद को पार करने की, अपनी छाप छोड़ने की बुनियादी इच्छा है।
उन्होंने स्वामी नैतिकता और दास नैतिकता में फर्क किया, मास्टर वर्सेस स्लेव मोरालिटी।
दास नैतिकता जैसे ईसाइयत कमजोरों की नैतिकता है, जो दया विनम्रता सिखाती है,
और स्वामी नैतिकता ताकतवर की है, जो गर्व, रचनात्मकता, आत्मसम्मान पर जोर देती है।
और फिर उनका वो उबरमैंच, ओवरमैन या महामानव का आइडिया,
ये कोई सुपर हीरो नहीं,
नहीं बल्कि वो इंसान है जो ईश्वर के मरने के बाद पैदा हुए शून्य को पार कर चुका है, पुरानी नैतिकता को तोड़ चुका है और अपने मूल्य खुद बना रहा है।
वो जीवन को उसकी सारी मुश्किलों और खुशियों के साथ स्वीकार करता है।
हाँ, और नीचे का वो सवाल, क्या तुम अपनी जिंदगी जैसी वो है उसे अनंत बार दोहराने को तैयार हो? इटर्नल रिकरेंस, ये सवाल तो हिलाकर रख देता है।
वाह, ड्यूरेंट हमें इन सभी विचारकों के दिमाग की क्या शानदार सैर कराते हैं। इस पूरी यात्रा से कुछ बड़े सबक या विषय उभरते हैं?
नहीं।
हाँ बिल्कुल, पहला तो यही कि दर्शन एक मानवीय कहानी है, फिलॉसफी एज ए ह्यूमन स्टोरी।
ड्यूरेंट ये बार बार दिखाते हैं कि प्लेटो का दर्द, स्पिनोजा का अकेलापन, नीचे की बेचैनी, ये सब उनके विचारों का हिस्सा है। दर्शन हवा में पैदा नहीं होता,
वो जीते जागते इंसानों के अनुभवों से उपजता है। दूसरा, ये महान संवाद वाली बात, द ग्रेट कॉन्वर्सेशन।
हाँ, कि कोई भी विचारक अकेला नहीं सोचता। अरस्तु प्लेटो से बहस कर रहे हैं, कांट यूम को जवाब दे रहे हैं।
ये एक लगातार चलने वाली बौद्धिक रिले रेस है, हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से मशाल लेती है और आगे बढ़ती है।
तीसरा, जीवन जीने के लिए एक तर्कसंगत आधार की तलाश, सर्च फॉर अ रैशनल बेसिस फॉर लाइफ।
सुकरात से लेकर कांट तक हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम अपनी जिंदगी सिर्फ परंपरा या भावनाओं के भरोसे न जिए,
बिल्कुल,
बल्कि सोच समझकर तर्क के आधार पर जिए।
और चौथा, ये कि विचारों का समाज पर जबरदस्त असर होता है, इम्पैक्ट ऑफ आइडियाज ऑन सोसाइटी, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है।
बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का असर देखिए या वैज्ञानिक तरक्की पर बेकन का, आज भी हमारे राजनीतिक, सामाजिक, यहाँ तक कि निजी फैसले भी कहीं ना कहीं इन दार्शनिक विचारों से प्रभावित होते हैं।
भारत में भी देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन पर गांधी जी के विचार,
ये सामाजिक न्याय पर अम्बेडकर के विचार, ये सब दर्शन के व्यवहारिक प्रभाव के उदाहरण हैं।
और आखिर में ड्यूरेंट का अपना मिशन, ज्ञान को सबकी पहुँच में लाना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ विजडम।
उनका मानना था कि फिलोसफी कुछ पढ़े लिखे लोगों की बपौती नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो एक सार्थक, सोचा समझा जीवन जीना चाहता है।
भारत की अपनी ज्ञान परंपरा भी तो यही सिखाती है कि गहरा चिंतन सबके लिए खुला हो।
ड्यूरेंट की किताब यादगार वाक्यों से भरी है, कुछ पंक्तियां तो जैसे जिंदगी का सार बता देती हैं।
हाँ, जैसे सुकरात का कहना, बिना जांच पड़ताल का जीवन जीने लायक नहीं है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग।
कितना सीधा पर कितना गहरा। क्या हम सच में अपने विश्वासों, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाते हैं या बस मान लेते हैं?
या फिर अरस्तो का ये विचार, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट।
ये टालमटोल करने वालों के लिए सीधी चोट है। अच्छा बनना है तो रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करना होगा।
भारत में अभ्यास के महत्व पर कितना जोर दिया गया है, ये उसी से जुड़ता है।
और नीचे का वो मशहूर वाक्य, जो मुझे मार नहीं डालता वो मुझे और मजबूत बनाता है।
What does not kill me makes me stronger। ये मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हार या मुसीबत अंत नहीं है
बल्कि वो हमें ज्यादा ताकतवर बनाने का मौका है। आजकल जिसे रेजिलियंस कहते हैं, ये वही तो है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें हम इस्तेमाल कैसे करें?
देखिए, एक तो सवाल पूछने की आदत डालें, सुकरात की तरह, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग।
किसी भी जानकारी को यूं ही ना मान लें, पूछें क्यों, कैसे, क्या इसका कोई और पहलू है। दफ्तर से लेकर घर तक हर जगह काम आएगी ये आदत।
दूसरा, अच्छी आदतें बनाएं, अरस्तु की तरह, कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर ज्यादा अनुशासित या दयालु बनना है तो रोज छोटे कदम उठाएं, आदतें ही हमारा चरित्र बनाती हैं।
तीसरा, अपने पूर्वाग्रहों को पहचाने, बेकन की तरह, रेकग्नाइजिंग बायसेस। हम सबके अपने अपने चश्मे हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, भाषा के।
इन्हें पहचानना हमें ज्यादा निष्पक्ष और समझदार बनाता है, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।
चौथा, भावनाओं को समझें, काबू करें, स्पिनोजा की तरह, इमोशनल रेजिलियंस। दुख या गुस्सा अक्सर बाहरी चीजों से ज्यादा हमारी अपनी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।
कारणों को समझने से शांति मिलती है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है ये।
और पांचवा, चुनौतियों में अवसर देखें, नीचे की तरह, फाइंडिंग मीनिंग इन स्ट्रगल। मुश्किलों से डरें नहीं, उनसे सीखें। असफलताएं हमें सिखाती हैं और मजबूत बनाती हैं।
तो इस किताब से निकलकर ऐसा लगता है कि दर्शन कोई सूखा अकादमिक विषय नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि जीवन जीने की कला सीखने जैसा है।
ये उन सवालों से जूझना है जो हमें इंसान बनाते हैं।
बिल्कुल, और ये समझना कि जिन विचारों ने दुनिया बदली वो किसी आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि गहरे व्यक्तिगत संघर्षों से जन्मे।
हम सब उस हजारों साल पुरानी बातचीत का हिस्सा हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं।
एक और बात मुझे महत्वपूर्ण लगी कि शायद जीवन के बड़े सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं है, अलग अलग नजरिए हो सकते हैं।
चार मायने रखते हैं, उनका असर होता है। दर्शन का अध्ययन हमें अधिक जानबूझकर जीने में मदद करता है।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर।
इन सभी महान विचारकों, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बेकन, स्पिनोजा, कांट, नीचे में से आपको कौन आज के समय के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है?
किसके विचार हमारे आज की उलझनों को सुलझाने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकते हैं, सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।